अब उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अब और देखेंगे कि इस संबंध को समझना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण को हम समझना चाहते हैं तो ठीक है, हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, हम अपनी वाणी से भगवान के बारे में बोलते हैं, कान से भगवान के बारे में सुनते हैं, आंखों से देखते हैं भगवान को, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारी इंद्रियां डायरेक्ट दे रही हैं उसके आधार पर हम नहीं देखते। हमारा देखने सुनने का जो तरीका है वो है शास्त्रीय श्रद्धा, श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। जैसे भगवान का विग्रह एक मूर्ति की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन भक्त श्रद्धा से कि भई ये साक्षात भगवान है, उसके अनुसार भगवान उस मूर्ति की सेवा करता है। अब भगवान सच्चिदानंद हैं तो भगवान की मूर्ति देख के भी आनंद आना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि भगवान अपनी ही योग माया से अपने इस शाश्वत स्वरूप को के शाश्वतता को, आनंदमयता को, ज्ञानमयता को ढककर रखते हैं भौतिकतावादियों से। लेकिन जब व्यक्ति सेवा करता है श्रद्धा के साथ तो भगवान इस योग माया के आवरण को हटाते हैं और भक्त अनुभव कर पाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि भक्त अनुभव कर पाता है गुरु के मार्गदर्शन में विग्रह की सेवा करते करते कि ये विग्रह साक्षात भगवान ही हैं। तो आप समझ सकते हैं सेवोन्मुक्तता जब होती है, हमारी सेवा की इच्छा होती है, तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं हमारे हृदय में। हृदय का अर्थ चित्त में। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है। यानी कि सगुणवादी कहते हैं भगवान हमेशा शाश्वत हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं और स्वरूप को प्रकट करते हैं, और निर्गुणवादी कहते हैं नहीं, निराकार था और निराकार अब स्वरूप लेकर के आया है। किंतु यदि हम भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम को भगवान के तत्व को समझने को ना करने के लिए प्रयोग में लाया जाए, ऐसे पढ़ा जाए, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि पहली चीज, पहली योग्यता जो भगवद्गीता को समझने के लिए है वो ये है कि कम से कम सिद्धांतिक रूप से व्यक्ति स्वीकार करे कि कृष्ण भगवान है, और अगर उसने यही स्वीकार नहीं किया तो फिर भगवत गीता पढ़ने से उससे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, अभी तो वो भ्रमित हो जाएगा। बल्कि ये भी कहेगा, आप देखिए इंटरेस्टिंग है, भगवान कहते हैं कि काम को जीतो, तो कहेगा अरे भाई गीता में तो भगवान बोल रहे हैं काम को जीतो और खुद कितनी पत्नियां लेके घूम रहे हैं। तो ये नहीं समझ पाएगा कि भगवान और उनकी पत्नियों में या गोपियों के बीच में काम का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो इसलिए पहले भगवान के तत्व को ठीक से समझना चाहिए, उसके बाद भगवान की लीलाओं को हम ठीक से समझ पाएंगे, और जब ठीक से समझ लेंगे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। यद्यपि वे इस धराधाम में समान व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। तो जो चीज सामान्य दिखती है वो है नहीं। जैसे सूर्य मात्र 1 इंच का गोला दिखाई पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं कि सूर्य, ज्ञान के आधार पर, कि सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी से, पृथ्वी कुछ भी नहीं सूर्य के समान। श्रीमद् भागवत में जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता के समक्ष प्रकट हुए थे तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे। आप बताइए कि क्या इस प्रकार से हमारा जन्म हुआ, या जिन गुरुओं को हम भगवान बोलते हैं क्या उनका जन्म इस प्रकार से हुआ, और अगर वो कहते हैं तो क्या प्रमाण है, क्या किसी शास्त्र में बोला गया है। किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक समान शिशु का रूप धारण कर लिया, बभूवः प्राकृतः शिशु। तो बुद्धिमान व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति को भगवान मानने नहीं मानता है, बल्कि शास्त्र के आधार पर स्वीकार करता है कौन भगवान है और कौन नहीं है। जब एक सामान्य व्यक्ति को हम भगवान मानने लगे और भगवान को समान मानने लग जाए तो ये एक अपराध है, ध्यान देना चाहिए। वे एक समान शिशु एक समान मानव बन गए। यहां पर भी यह इंगित होता है, एक बात इंटरेस्टिंग है कि भगवान ने पहले अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया फिर समान शिशु बन गए। ऐसा नहीं था कि वो समान शिशु थे और बाद में भगवान बन गए, जो कि आजकल के बहुत सारे भगवान घूमते रहते। यहां पर भी यह इंगित होता है कि समान व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेना। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही समान मनुष्य जैसे नहीं। तो बताइए ऐसा कोई कर सकता है? भगवान ने पहले अपना विश्व रूप दिखाया, फिर उसके बाद अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर अपना सुदूरदर्शन बहुत रेयर जो है भगवान का जो द्विभुज रूप है वो दिखाया, क्योंकि वही रूप अर्जुन को आकृष्ट करता था। ना तो अर्जुन को चतुर्भुज रूप आकृष्ट करता था और ना तो उनको विश्व रूप आकृष्ट करता था, भगवान का ये जो द्विभुज रूप है ये अर्जुन को आकर्षित करता था। कतिपय लोग यानी कुछ लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक समान व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्या से। जीव, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो समान व्यक्ति है उसको केवल संस्कृत का ज्ञान है, कोई अनुभूति आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं करते हैं, कोई भजन नहीं करते भगवान का। लेकिन महान आचार्य लोग दिव्य अवस्था में विशुद्ध सत्व की अवस्था में स्थित रहते हैं अपने भजन के प्रभाव से, और वैसे तो वो शाश्वत रूप से भगवान के भक्त होते हैं, तो फिर वो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ पाते हैं और उसकी व्याख्या कर पाते हैं। ये भौतिकतावादी लोग समझ नहीं सकते। ये हमको महान मुक्त आचार्यों का ही टीकाओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। तो अर्थात इसका ये हुआ कि हम सभी को भक्ति के अभ्यास के साथ साथ भगवान के विग्रह की तो पूजा करनी ही चाहिए, साथ साथ अन्य जीवों में भी भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात कि भगवान उनके शरीर में भी हैं और किसी का भी असम्मान नहीं करना चाहिए। भगवत भक्तों के तीन प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं, अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि समुचित सम्मान करने से क्या होगा, बड़ा बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सकल सम्मान कोरित शक्ति देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। जब ये प्रार्थना है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कि भगवान जब मुझे आप शक्ति देंगे जिसके द्वारा मैं सभी जीवों का यथा योग्य सम्मान कर पाऊंगा, तो तभी मेरे सारे अपराध नष्ट होंगे। अगर हम किसी का सम्मान करते हैं उससे हम उसके प्रति अपराध क्यों करेंगे? तो अन्य जीवों के प्रति अपराध करना या वैष्णवों के प्रति अपराध करना या किसी भी व्यक्ति के प्रति अपराध करना का अर्थ यही है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो व्यक्ति भी चलता फिरता मंदिर है भगवान का, भगवान उसके हृदय में स्थित है। तो व्यक्ति को जब भक्ति करता रहेगा भगवान की सेवा करता रहेगा तो धीरे धीरे साक्षात्कार प्राप्त होगा। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपास करते हैं, वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र हैं तो क्या वे मंदिर या अर्चा वगैरह में नहीं होंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कुछ लोग कहते हैं भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में पूजा करने की क्या जरूरत है। वस्तुतः वो भगवान की पूजा ही नहीं करना चाहते हैं। भगवान सब जगह हैं फिर भी भगवान की पूजा हम करते हैं क्योंकि इससे हमारा कल्याण होता है, भगवान से हमारा संबंध स्थापित होता है। दूसरा उदाहरण है कि भाई जब पानी पीना हो तो हम एक बोतल में पानी इकट्ठा करके पीते हैं। अब ये तो नहीं कहते कि पानी हर जगह अवेलेबल है, हवा में हर जगह व्याप्त है पानी तो बस हवा से पी लो। नहीं, अगर हम पानी पीना चाहते हैं तो हमें ग्लास में पानी रख करके पीना पड़ेगा, भले ही पानी सब जगह व्याप्त क्यों ना हो। उसी प्रकार से भगवान सब जगह हैं ये तो हम अनुभव नहीं कर रहे ना, ये भी हम शास्त्र से सुनते हैं। तो शास्त्र में केवल यही लिखा है कि भगवान सब जगह हैं उनकी पूजा मत करो, शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि भगवान सब जगह हैं और अपने विग्रह के रूप में भी हैं, और विग्रह के द्वारा भगवान हम जैसे भक्तों को जो लोग भगवान को साक्षात रूप में सब जगह नहीं देख सकते, विग्रह के रूप में आकर के भगवान हमको दर्शन देते हैं, हमारा कल्याण करते हैं और हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं किंतु इसके साथ साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। तो भगवान सभी ब्रह्मांडों में हैं और हर परमाणु में भी हैं। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। अर्थात भगवान गोलोक में नित्य लीला विहार करते हैं लेकिन इस जगत के सृष्टि पालन सहार के लिए अपने आप को अन्य विष्णु अवतारों में विस्तारित करते हैं और इसको बिल्कुल निर्लिप्त हुए होते हुए भी इस सृष्टि को पालन करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है ना, और उसके साथ साथ ये सोचना और उनका परिहास करना कि वे समान मनुष्य हैं बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़े अज्ञान का सूचक है, इससे व्यक्ति को बचना चाहिए, तब भगवान की कृपा उसको मिल पाएगी। हरे कृष्ण।